İran Radio Podcast.
दोस्तों, रूजवेल्ट स्ट्रीट पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। ये रूजवेल्ट स्ट्रीट है। यहाँ से हम तेहरान में अमरीकी दूतावास पर नियंत्रण की घटना के बारे में बताएंगे। ये कहानी दस्तावेजों पर आधारित होगी जिस पर कम ही रोशनी डाली गई है। इस पॉडकास्ट में हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि उन दिनों जिस सड़क का नाम रूजवेल्ट था वो एक बड़ी सियासी घटना का केंद्र कैसे बन गई। ऐसी घटना जिसे ईरान के इतिहास में दूसरी क्रांति कहा जाता है। एक दूतावास को किसी स्कूल की तरह क्यों बनाया गया? 1950 के दशक में तेहरान में ये सवाल कई लोगों के दिमाग में था। रूजवेल्ट सड़क पर लाल ईंटों की एक इमारत, बड़ा सा कॉरिडोर जिसके दोनों तरफ कमरों की लंबी कतारें थीं। लेकिन स्कूल वाले इसके डिजाइन के पीछे किसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई थी। इस सादी सी इमारत में बहुत ही बड़ा राजनीतिक और जासूसी नेटवर्क चल रहा था। काजारी शासनकाल में किराए की इमारत में चलने वाला अमरीकी दूतावास जल्द ही ईरान में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। 150 साल पहले नासिरुद्दीन शाह काजार के जमाने में आधिकारिक तौर पर ईरान में अमेरिका की एंट्री हुई थी। अमेरिका के पहले एम्बेसडर बेंजामिन सैमुअल ग्रीन व्हीलर थे, जिन्होंने 1883 में तेहरान के बाहर एक गांव में एक बंगला किराए पर लिया। उन्होंने इस बारे में लिखा, आर्थिक दृष्टिकोण से दूतावास के लिए जगह खरीदना बेहतर होता, या कुछ विदेशी दूतावासों की तरह 10 या 20 साल से अधिक समय के लिए किराए पर लेना बेहतर रहता, लेकिन धन की कमी की वजह से खरीदना मुश्किल था और कांग्रेस के विरोध और स्पष्ट नीतियों में कमी की वजह से लंबे समय के लिए किराए पर लेना संभव नहीं था। अमेरिका के पास तेहरान में दूतावास के लिए शहर के भीतर कोई जगह नहीं थी, जबकि ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की और इटली जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों के शहर में बड़े दूतावास थे। उनके दूतावासों की इमारतें काफ़ी बड़ी थीं और तेहरान के पॉश इलाके में उनके पास हरे भरे बगीचे भी थे। गांव में इमारत किराए पर लेने के बाद अमरीकी राजदूत जॉन कॉल्डवेल ने शहर के निकट एक दो मंजिला इमारत किराए पर ली। ये पहले विश्व युद्ध का ज़माना था। कॉल्डवेल ने अपने मिशन के आखिरी दिनों में तकरीबन 1921 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास को एक बड़े बगीचे में शिफ्ट कर दिया। ये इलाका नगरपालिका की सीमा से बाहर था। नॉर्थ ईस्ट में स्थित इस इलाके में उस जमाने में कोई शहरी सड़क नहीं थी। उस जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक कच्ची सड़क थी। बाद में इस सड़क का नाम रूजवेल्ट एवेन्यू रखा गया। अमेरिकी कई वर्षों तक इस जगह में किराएदार रहे। नवंबर 1928 में उन्होंने इसे लगभग $60,000 में खरीद लिया। उसके 5 साल बाद उन्होंने इसे अमेरिकी दूतावास के नाम पर रजिस्टर करवाया। नवंबर 1943 में USSR के नेता जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेहरान पहुंचे। उन्होंने 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक तेहरान में रूसी दूतावास में खुफिया संयुक्त बैठक की। मित्र देशों के नेताओं ने जर्मन सेना से लड़ने और युद्ध के मोर्चे पर एक दूसरे की सहायता के तरीकों पर विचार किया। इस मीटिंग की ईरान के शाह और सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई थी। यह मीटिंग दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और उसके बाद विश्व व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। इसके एक साल बाद तेहरान के मेयर ने राजधानी में 3 सड़कों का नाम इन 3 नेताओं के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। ईरान की राजधानी में 3 मार्गों का नाम इन 3 महाशक्तियों के नेता चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिकियों ने तेहरान में अपने दूतावास के निर्माण का विस्तार करना शुरू कर दिया। सितंबर 1951 में तेहरान में लाल ईंटों से बनी अमेरिकी दूतावास की इमारत में गतिविधियां जोर शोर से शुरू हो गईं। अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण यह इमारत एक अनोखी जगह बन गई, जिसका फ्रंट पार्ट ईरानी वास्तुकला से मेल नहीं खाता था। अमेरिकियों का कहना था कि इमारत का अगला भाग अमेरिका में पब्लिक हाई स्कूल की इमारतों से काफी मिलता जुलता है। ये एक लंबे कॉरिडोर वाली इमारत है जिसके दोनों तरफ कई कमरे हैं। इस इमारत की मंजिलों को उनके महत्व के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। तहखाने की मंजिल को सबसे कम और दूसरी मंजिल को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी। अमेरिकी असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण भाग दूसरी मंजिल पर था। एम्बेसडर चार्ल्स डी अफेयर्स, पॉलिटिकल सेक्शन के हेड, कॉन्सुलेट के हेड और एम्बेसडर के स्पेशल असिस्टेंट्स के कार्यालय इसी मंजिल पर थे। इसी मंजिल पर मरीन कॉर्प्स कक्ष और CIA कार्यालय भी स्थित थे। अमेरिकी विदेश विभाग में ईरान डेस्क के प्रमुख हेनरी प्रेस्ट का कहना था कि एम्बेसडर का दफ्तर एक स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर की तरह डिजाइन किया गया है। इसके एक कोने में डेस्क थी और दूसरी दीवार पर यूरोप और एशिया का एक बड़ा नक्शा लगा था। इस कमरे की बड़ी खिड़कियां एम्बेसी के विशाल सहन की तरफ खुलती थीं और फर्श पर एक बड़ा तबरीजी फूलों के पैटर्न वाला कालीन बिछा हुआ था। इस मंजिल के पूर्वी भाग में एम्बेसी का खुफिया कमरा था। ये कमरा कंक्रीट से साउंड प्रूफ बनाया गया था। इस कमरे का महत्व इतना था कि सेक्रेट रूम के कर्मचारियों के अलावा किसी को भी इसमें प्रवेश की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि अमेरिकी एम्बेसडर को भी नहीं। विजिटर्स एक छोटी सी खिड़की से ही यहाँ के कर्मचारियों से संपर्क कर सकते थे। अमेरिकी विदेश विभाग में ईरान डेस्क के प्रमुख ने भवन के नामकरण के बारे में कहा था, हमने इमारत का नाम हेंडरसन हाई स्कूल लॉय वेस्ले हेंडरसन के सम्मान में रखा है, जो इसके निर्माण के वक्त इस इमारत के अध्यक्ष थे। अमेरिकी दूतावास की इमारत में निर्माण कार्य कई साल तक जारी रहा। इसी के साथ इसमें राजनीतिक, खुफिया, सैन्य, आर्थिक और CIA के विभागों का भी इजाफा किया गया। इसके अलावा एम्बेसी से संबंधित इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एसोसिएशन, फुलब्राइट कमीशन और पैन अमेरिकन एयरलाइंस को भी इसमें जगह दी गई। शाही शासनकाल के दौरान ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक के 8वें डायरेक्टोरेट के दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी दूतावास में 4 प्रमुख सेक्शन थे जो ईरान की नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाते थे। राजनीतिक, सलाहकार, खुफिया और CIA विभाग। इस बीच CIA को तेहरान में अमेरिकी दूतावास का सबसे महत्वपूर्ण पिलर माना जाता था। मिशन की गतिविधियां 1947 में शुरू हुई थीं। अपनी आधिकारिक गतिविधियों के अलावा CIA के एजेंट दूतावास अमेरिकी कंपनियों और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडलों से संबंध संस्थानों में विभिन्न रूपों में मौजूद थे और उन्होंने ईरान में घुसपैठ और सूचना नियंत्रण के लिए एक व्यापक नेटवर्क बनाया हुआ था। CIA का हेड ऑफिस दूतावास की मेन इमारत की दूसरी मंजिल पर था, जबकि 6 अधिकारियों का एक समूह दूतावास के बाहर एक अलग इमारत में काम करता था। इन संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना पर थी। 1973 में तेहरान में अमेरिकी राजदूत के रूप में रिचर्ड हेल्म्स की नियुक्ति के साथ ही ईरान में अमेरिका का प्रभाव पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। राजदूत के रूप में अपना कैरियर शुरू करने से पहले हेम्स ने 4 साल तक अमेरिका में CIA के डिप्टी डायरेक्टर और 7 साल तक डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान, विशेष रूप से तेहरान की कई बार यात्रा की थी। हेम्स की तैनाती के दौरान तैयार की गई सावाक की रिपोर्टों से पता चलता है कि दूतावास में सुरक्षा गतिविधियों में तेजी आई थी। मेन गेट और गैरेज के दरवाजे को छोड़कर दूतावास के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे और ईरानी और अमरीकी गार्ड प्रवेश द्वारों की निगरानी पर तैनात थे। बिना आईडी चेक किए किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती थी। हेम्स के कार्यालय के दौरान अमरीकी दूतावास ने नए इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट किए थे। इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो किसी भी तरह के पत्र या पैकेज को बिना खोले कंट्रोल कर सकता था। इसके अलावा कलेक्शन में एनेस्थेटिक गोलियों वाली 2 बंदूकें भी शामिल थी जो टारगेटेड व्यक्ति को फौरन बेहोश कर सकती थी। 11 फरवरी 1975 को सावाक के 8वें डायरेक्टोरेट के हेड को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें दूतावास में खुफिया दस्तावेजों को रखे जाने का उल्लेख था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास के सभी दस्तावेज राजदूत के कार्यालय के पास एक कमरे में रखे गए थे और ये दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें उस कमरे से हटाया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि राजदूत भी व्यक्तिगत रूप से इस कमरे की जाँच करने के लिए आते थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि दस्तावेजों और बेकार कागजों को कैसे नष्ट किया जाता है। दस्तावेजों को उचित रूप से स्टोर करने के लिए दूतावास के हर कमरे में तिजोरियां थीं और इन तिजोरियों के पास संवेदनशील सामग्रियों को नष्ट करने के लिए 2 पैकेज रखे गए थे। पहला पैकेज गोपनीय और अति गोपनीय श्रेणी के रद्दी कागजों के लिए था। इसके अंदर की सामग्री को एक मशीन के जरिए पाउडर में बदल दिया जाता था। दूसरा पैकेज जो अत्यंत गोपनीय रद्दी कागजों के लिए था उसकी सामग्री को जला दिया जाता था। दूतावास के गार्ड जो सभी अमेरिकी मैरीन थे हर रोज के आखिर में इन लिफाफों को इकट्ठा करके नष्ट कर देते थे।